Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Vishwatmanandji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
So, bole ke theek hai. Sham ko to apna sharab pi li unhone. Sab sharab allowed nahi hai unke yahan. Paap hai. तो शाम को पी और सुबह को तौबा कर ली. बोले रिंद के रिंद रहे और जन्नत भी हाथ से न गई. पियक्कड़ भी बने रहे और नारायण जन्नत में अपना स्थान भी सुरक्षित हो गया. तो ऐसे ही लोग समझते हैं कि हम दोनों हाथों में लड्डू रखेंगे और तत्व ज्ञान हो जाएगा. इतना सरल सौदा नहीं है नारायण. एक समय की होए भुआलू हसब ठठाव फुलाव गालू, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते. निधिध्यासन का जो पीरियड होता है उसमें आपको सब कामों से विरक्त होना ही पड़ता है. आखिर वैराग्य की कोई जरूरत भी है या नहीं? श्रवण में तो इतनी जरूरत है कि आपका ध्यान दूसरी जगह न जाए, लेकिन निधिध्यासन में इसकी जरूरत है कि आपका ध्यान भी दूसरी जगह न जाए और आपका काम भी दूसरी जगह न हो. एक ही काम हो और एक ही ध्यान हो, तब वो ब्रह्माकाराकारित वृत्ति का उदय होता है, साधारणतया नहीं होता है. तो अग्नि दो प्रकार की है. तो ये व्यापक अग्नि के लिए कहते हैं कि व्यापक अग्नि जो है वो भुवनम प्रविष्टा. भुवन में माने संसार में. भुवन किसको कहते हैं? जिसमें ये सब भूत प्राणी पैदा होते हैं उसको भुवन बोलते हैं. अपने भागवत पुराण में पौराणिक मान्यता है कि 14 भुवन है. 7 लोक ऊपर के हैं, 7 लोक नीचे के हैं. तो यही भूर्भुव स्व मैं जन तप सत्यम, ये 7 लोग तो ऊपर के हैं और क्या है वो अतल वितल सुतल तल अतल पाताल, ये 7 लोग नीचे के हैं. तो 14 भुवन में ये सारी सृष्टि जो है बटी हुई है और प्रत्येक सृष्टि में एक एक देवता है, एक एक इनके मनु है, एक एक ब्रह्मा है, एक एक विष्णु है, नारायण, एक एक शंकर है. सबके यहां उपासना होती है, सबके यहां माने एक एक लोक में जैसा होता है वो सब लोकों में वैसा ही होता है. जिनको विस्तार से देखना हो वो श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में इसका वर्णन है, वहां विस्तार से देख सकते हैं. तो 14 भुवन है. इन 14 भुवन में अग्नि व्यापक है. आप देखो सृष्टि के क्रम में क्या बताया. सबसे पहले आकाश, आकाश के बाद वायु और वायु के बाद अग्नि. तो ये 3रे नंबर की हुई भाई. तो आकाश सब में व्यापक है कि वायु सब में व्यापक है कि अग्नि सब में व्यापक है? तो अब इसमें 10वां श्लोक जो है इसमें वायु का दृष्टांत दिया है, तो इसलिए कोई पक्षपात नहीं है कि अग्नि ही के क्यों चुना. परंतु यहां स्थूल जगत में 3 आपकी मैटर जो है 3 स्टेट्स में रहता है, 3 सॉलिड लिक्विड और गैस, ठोस द्रव और गैस. और मैटर क्या चीज है नारायण? मैटर सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है? तो मैटर तो सभी है. मैटर माने वस्तु. तो तत्व, तत्व तो एक है. मैटर उनकी भाषा में बोल रहा हूं, तत्व तो एक है लेकिन उसके 3 स्थितियां हैं. तो इनमें तीनों में फर्क क्या है? टेम्परेचर का ही फर्क है सब में. आप ज्यादा अग्नि दे दो तो भाप बन जाएगी, कम अग्नि दो तो द्रव बन जाएगा, बहुत कम अग्नि हो तो ठोस हो जाएगा नारायण। अब कहते हैं ना, ये धरती जो है पहले सूर्य का हिस्सा थी, फिर सूर्य में एक क्या बम्बार्डमेंट हुआ, क्या हुआ, ये जो आजकल जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बिग बैंग थ्योरी जो है, उसमें एक धमाका हुआ, उसमें सूर्य की का जो लावा था वो उससे छिटक गया और जो जितना दूर जाके पड़ा उतनी ही ठंडा होना शुरू हो गया, तो ये धरती जो है ठंडी होते होते सिकुड़ गई, इसमें कहीं गड्ढे हो गए, कहीं पर्वत हो गए, और इसमें फिर बारिश हुई तो सब जगह ये समुद्र बन गए नारायण। ऐसे ये कॉस्मोलॉजी आजकल बताते हैं। वैसे इसका वर्णन जो है छांदोग्य उपनिषद के भाष्य में दिया हुआ है। मैं तो ताज्जुब रह गया कि आजकल बिग बैंग थ्योरी को साइंस की बहुत आविष्कार मानते हैं, लेकिन ये छांदोग्य उपनिषद में और भाष्य में वहां ये पहले से ही लिखी हुई बात बिग बैंग। तो अग्नि यथैको भुवनम प्रविष्टो, तो जितने ये रूप दिखलाई पड़ रहे हैं ये सब अग्नि के ही रूप हैं, चाहे वो ठोस रूप हो, चाहे द्रव रूप हो, चाहे गैस रूप हो, अग्नि ही इन इन रूपों में मैटर के साथ दिखलाई पड़ रही है। अब हमारे यहां मैटर जो है अलग से कुछ नहीं मानते, माने प्रकृति मैटर है, समझो वेदांत में प्रकृति मैटर है। तो प्रकृति क्या चीज है, तो बोले ये तो शक्ति तीनों गुणों का की साम्यावस्था है। अब तीनों गुणों की साम्यावस्था की कल्पना नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी बुद्धि सोचेगी तो तब जब तीनों में असाम्य होगा। अगर साम्यावस्था की सोचेगी बुद्धि तो बुद्धि बुद्धि नहीं रहेगी, वो तो समाप्त हो जाएगी नारायण। तो महाप्रलय हो जाए तब उस प्रकृति को समझ सकते हो। तो महाप्रलय तो ये भाव से ही होती है। पुराणों में जो महाप्रलय का वर्णन है वो सिर्फ आपको एक बात दिग्दर्शन कराने के लिए, ऐसा होता है इसके लिए नहीं है। अब वो कौन से ऋषि को महाप्रलय का दर्शन हुआ, मार्कंडेय को, तो वो तो अपने स्थान पे ही बैठे थे और बस उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि चारों तरफ से पानी आ रहा और धरती सारी बह गई, अब पानी में नाव आ गई, ये हो गया वो हो गया, बस देखते रहे। और फिर जब दृश्य समाप्त हुआ तो फिर वहीं उसी टीले पे बैठे थे जहां पहले बैठ कर भजन कर रहे थे। तो हुआ हवाया कुछ नहीं, महाप्रलय का दर्शन दृश्य देखना था, वो देख लिया उन्होंने। तो ये दिखना ही है नारायण, सृष्टि दिख रही है ये भी दिखना ही है, और इसमें प्रलय दिख जाए तो ये भी दिखना ही है। और एक अपने यहां तो लय चिंतन भी होता है ना वेदांत में, कैसा सोचो कि धरती जो है वो जल में लीन हो गई, जल अग्नि में लीन हो गया, अग्नि वायु में लीन हो गई, वायु आकाश में लीन हो गया, आकाश अहंकार में लीन हो गया, अहंकार महतत्व में लीन हो गया, महतत्व प्रकृति में लीन हो गया, और प्रकृति मुझ में नित्य लीन है नारायण। ऐसा करके सोच कर बैठ जाओ, बस यही महाप्रलय का दर्शन है नारायण। तो अग्निर यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, सब भूतों की आत्मा एक ही है। अब इसमें दो बात समझनी है, एक तो भूतों की आत्मा और दूसरी उनकी एकता। अब इस पुस्तक की आत्मा क्या है ये देखो, इस पुस्तक की आत्मा क्या है। आत्मा माने सार वस्तु, जिसके बिना ये पुस्तक नहीं रह सकती। तो कागज इसकी आत्मा है। अब बोले कागज का सार क्या है, जैसे पुस्तक एक वस्तु है ऐसी कागज भी तो एक वस्तु है, तो कागज का सार क्या है, मिट्टी, तो मिट्टी का सार क्या है, फिर वहीं पहुंच जाएंगे जल, और जल का सार अग्नि, तो दृष्टांत भी ये स्पष्ट हो गया। तो सब भूतों की आत्मा, आत्मा माने सब भूतों का जो सार सर्वस्व है। तो आप जैसे किसी मान लो धरती को देखते हो, तो आप धरती को देखते हो इसके सार को नहीं देखते हो। क्यों नहीं देखते हो कि धरती के, अब जैसे एक बॉल रखी है मान लो, यही धरती है, यहां बॉल रखी है, अब बॉल को देखते हो तो आप उसका गोल गोल बस आकार देख लेते हो, रूप देख लेते हो, लेकिन उसका सार क्या है, उसका जो उपादान कारण है वही उसका सार है। सृष्टि का उपादान कारण क्या है, सृष्टि किस मसाले से बनी हुई है, हाँ तो ब्रह्म से, लेकिन ब्रह्म तो दिखाई नहीं पड़ता है तो बोले प्रकृति से बनी हुई है, माया से बनी हुई है। वेदांत में कहते हैं कि प्रपंच का जो उपादान कारण है वो विवर्ती कारण तो है ब्रह्म, और परिणामी कारण है माया। अगर आप ये मानोगे कि इसमें कुछ परिवर्तन हो करके ये वस्तु बनी है, किसी चीज में बदल हो करके ये वस्तु बनी है, तब तो माया को मानो, उसका उपादान कारण। और बोले बस ये सामने हमारी आंखों के आ गई तो दिख रही है, यही बनना है इसका, ऐसे मानते हो तो आप इसका उपादान कारण आप ही हो नारायण। इसी को कहते हैं चैतन्य ही इसका उपादान कारण है। चैतन्य उपादान कारण का मतलब कुछ नहीं होता है, माने चैतन्य के बिना जिसकी अनुभूति ना हो सके उसी का चैतन्य उपादान कारण है। तो चैतन्य के बिना तो कुछ अनुभव होता ही नहीं है। और जिस चीज का भी अनुभव होता है, मान लो पुस्तक का ही अनुभव होना है, तो पहले पुस्तक चैतन्य के साथ भीतर जाकर के एक होगी, तब ये इस पुस्तक का अनुभव हो सकता है। और बाहर पड़ी रहे और इसकी इमेज भीतर न बने तो इसका ज्ञान नहीं हो सकता। तो ये सब दृष्टि मात्र है। उपादान कारण चैतन्य को इसलिए बोलते हैं कि सब दृष्टि मात्र है, और माया इसका उपादान कारण है। इसका मतलब है कुछ खुट पुट करके बदल हो करके, पहले सूर्य का अंश थी, फिर वहां से निकल कर ठंडी हुई, अब ये सब माया है। बोले सूर्य का अंश थी, ये देखा किसी ने, कहां थे तुम उस समय देखने के लिए, अगर कोई साक्षी नहीं था तो कैसे कह सकते हो कि सूर्य का अंश थी। तो ये ज्ञान होना बस यही है, इसका ज्ञान हो रहा है, यही उपादान कारण है। और इसमें वास्तविकता मानोगे तो माया उसका कारण है। अच्छा, जादूगर ने अपने जादू से एक पेड़ बना दिया, ऐसे हाथ पर जो है, कहते ना हाथ पर सरसों जमा दी, कहावत है हिंदी में, हाथ पर सरसों जमाना। तो जादूगर जो है हाथ पर सरसों जमा देता है, ऐसे हाथ किया ये धरती हो गई, ऐसा किया तो इसके ऊपर जो है पौधा निकल आया ना। अब वो ना धरती हुई ना वो पौधा निकला ना कुछ हुआ, आपकी नजरबंदी उसने कर दी जादूगर ने, जैसा उसने संकल्प किया वैसा दिखा दिया। तो ये एक संकल्प चल रहा है, आप तो समझते हो कि हमारा माने एक व्यक्ति का संकल्प चल रहा है, ये एक व्यक्ति का संकल्प नहीं चल रहा है, ये हिरण्यगर्भ का संकल्प चल रहा है नारायण, ईश्वर का संकल्प चल रहा है। उसके स्वप्न में हम ये सब हम और आप बने हुए हैं, ये जो वो है ना चौपाई, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब इस चौपाई को लोग जो है समझते हैं कि जगत सब सपना, तो ये हमारा सपना है। अरे भाई ये इस चौपाई को बोल कौन रहा है? ये तो शंकर भगवान बोल रहे हैं ना, हे उमा, हे पार्वती जी, मैं अपना अनुभव तुमको बता रहा हूं कि ये संसार जो है सब सपना है। तो पहले अपने आप को शंकर भगवान की जगह पर रखो, फिर देखो कि ये सपना दिखता है कि नहीं दिखता है। तो अहंकार शिव, बुद्धि अज, मन शशि, चित्त महान। तो ये जो अहंकार है ना छोटा सा, इसका सपना मत मान लेना इसको, नहीं तो निराशा ही हाथ लगेगी नारायण। ये अहंकार छोड़ दो अपना, तब इसकी जगह शिव आ जाएगा, शिवोहम हो गया। अब देखो ये सारा संसार अपना सपना है। तो सपने का उपादान क्या है? स्वप्न दृष्टा ही उसका उपादान है, यही उसका सार है, वो ही उसकी आत्मा है, वो एक ही है। स्वप्न में चाहे कुछ भी दिखलाई पड़े, सबका आत्मा एक ही है, और वो कौन है? स्वप्न दृष्टा। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। वही स्वप्न के सब पदार्थ बना हुआ है और वही उन सब पदार्थों से बाहर भी है, क्योंकि वो तो खाट पर लेटा हुआ आनंद से सपना देख रहा है। तो जब बाहर है तो असंग है, सर्वाधिष्ठान भी है और स्वयं उसका साक्षी भी है, इसलिए उसके ऊपर कोई स्वप्न के क्रिया प्रक्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तो अग्नि के दृष्टांत से बात बताई। अब इसी बात को वायु के दृष्टांत से दसवें मंत्र में बताते हैं। वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। बस अग्नि की जगह वायु आ गया, बात वो की वही है, इसलिए इसकी अलग से व्याख्या नहीं करते। सूर्यो यथा, अब ये ग्यारहवां है, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषैर् बाह्य दोषैः। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य। इसका भी अर्थ तो हो ही गया समझो। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु, ये जो सूर्य आपको दिखता है ना, ये जितने भी आंख वाले हैं सबकी आंख ये सूर्य ही है। बोले ये तो सुना था कि आंख का अधिदेवता सूर्य है, लेकिन आंख भी सूर्य है, ये तो नहीं समझ में आती है बात। बोले अच्छा, अगर सूर्य ना निकला हो तो आपको संसार में कुछ मालूम पड़ेगा? अंधेरे में कुछ मालूम पड़ेगा? कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। ये तो कमती अंधेरा ज्यादा अंधेरा, ये भी सूर्य चूंकि कभी निकलना इसका बंद ही नहीं होता है, सूर्य का प्रकाश तिरछा जाकर के और हल्का अंधकार हो जाता है, और जब बिल्कुल रुक जाता है तो गहन अंधकार हो जाता है, लेकिन बिल्कुल तो कभी रुकता ही नहीं है, क्योंकि धरती बहुत छोटी है सूर्य की अपेक्षा से, 109 गुना बड़ा है सूर्य धरती से नारायण। तो इसलिए उसके प्रकाश जो है कभी खत्म नहीं होता है। तो सूर्य का प्रकाश रहता है इसलिए आंखें देख पाती हैं। अब मान लो ये चाबी को देखना है तो इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, फिर इससे टकराएगा, टकरा करके फिर वो प्रकाश मेरी आंख में आएगा, आंख में आकर के इस चाबी की प्रतिबिंब जो है भीतर उत्पन्न करेगा, फिर उसका ज्ञान होगा, फिर कहेंगे हमने आंख से देख लिया नारायण। अथवा पुरानी परिपाटी से ऐसे बोलते हैं कि आंख में से रूप वृत्ति निकलती है और चाबी तक पहुंचती है, और चाबी के आसपास भी जो चैतन्य है उस चाबी के आकार को ग्रहण करती है और जो उस वृत्ति में चैतन्य है वो उस चैतन्य से एक हो जाता है। अब ज्यादा बारीकी में जाओगे तो बुद्धि जो है गड़बड़ाएगी। सीधी सीधी बात यह है कि सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है, वो चाहे इससे टकरा के हमारी आंख में आवे, चाहे आंख का प्रकाश निकल करके इसके पास जावे, बहरहाल जब तक ये चाबी आपके अंतःकरण में आकर के प्रतिबिंबित नहीं होती है तब तक इसका ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए ये चक्षु जो है वास्तव में सूर्य ही है। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषैः। अब सूर्य का प्रकाश तो नारायण मल के ऊपर भी पड़ता है और फूलों के ऊपर भी पड़ता है, गंदगी के ऊपर भी पड़ता है, सुंदर वस्तुओं के ऊपर भी पड़ता है। तो क्या सूर्य का प्रकाश गंदा हो जाता है? क्या सूर्य का प्रकाश सुंदर हो जाता है? वो तो सुंदर को भी दिखलाता है और गंदगी को भी दिखलाता है। न लिप्यते, उसमें लेप नहीं होता है। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, इसी प्रकार से ये सब भूतों का अंतरात्मा है, ये एक रहने पर भी न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य, यही सूर्य है। तो जैसे बाहर का सूर्य जिन चीजों पर पड़ता है उनके दोष से प्रभावित नहीं होता, ऐसे ये भीतर का सूर्य भी जिन जिन वस्तुओं को अनुभव में करता है उनके दोष से वो प्रभावित नहीं होता है। एक अध्यास भाष्य की पंक्ति है कि जिसका जिसमें अध्यास होता है वो अधिष्ठान उस अध्यास से अणुमात्र भी रंजित नहीं होता है, संबंधित नहीं होता है। अब रस्सी में आप सांप देखते हो तो थोड़ा बहुत असर सांप का जहर का आ जाता होगा रस्सी में तो वो नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो भ्रम से कल्पित है। रस्सी में सांप है, सीपी में चांदी है। नारायण, स्वामी महेशानंद जी ने एक जगह लिखा है कि एक आदमी वेदांति को गाली दे रहा था, बोले अच्छी भली चांदी दिख रही थी तो सोचता था कि इतनी इकट्ठी कर लो तो इतना पैसा मुझे मिल जाएगा। अब इन वेदांतियों ने कहा कि नहीं नहीं, ये सीप है, चांदी नहीं है। और जाकर देखा तो सुसरी सीप ही निकली तो मेरा तो सारा जो है पैसा खत्म हो गया। तो सीपी में चांदी है और बालू में जैसे मृग तृष्णा का जल है और आकाश में जैसे मलिनता है, ये सब भ्रांतियां हैं। तो ये भ्रांति आखिर हो क्यों जाती है? क्यों होती है भ्रांति? रस्सी में जो सांप की भ्रांति होती है वो क्यों हो जाती है? बोले सादृश्य के कारण हो जाती है। ये सब वेदांत में इन चीजों का विचार किया जाता है। तो बोले सादृश्य दोष से जो है ये भ्रांति हो जाती है। सांप भी टेढ़ा मेढ़ा होता है और रस्सी भी टेढ़ी मेढ़ी है तो सांप का भ्रम हो जाता है। तो हमारे स्वामी निश्चलानंद जी महाराज कहते हैं कि जो डरपोक आदमी होगा उसे तो रस्सी में सांप का भ्रम होगा, और जो लालची आदमी होगा उसे रस्सी में जो है माला का भ्रम होगा, और जो वैराग्यवान होगा उसे रस्सी में जो है भूछिद्र का भान होगा। अन्यथा प्रतीति तो सबको होती है लेकिन उसमें अंतःकरण के दोष अपने सबके मिल जाते हैं। सर्प की ही प्रतीति इसलिए होती है कि वो डरपोक है। और एक बात तो वो और कहते हैं कि एक मदारी सपेरे जो होते हैं वो तो उस रस्सी में सांप को देख करके खुश होगा कि भागेगा? वो तो खुश होगा कि इसको मैं पकड़ लूंगा और मेरा काम चलेगा। और जो डरपोक होगा वो सांप को देख करके भागेगा डर है। तो सांप एक ही है और है ही नहीं वहां पर सांप, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया अलग अलग दिखलाई हो रही है, वो सब अंतःकरण की भ्रांति है। ये सांप है कहां असल में? रस्सी में भी सांप नहीं है और अंतःकरण में भी सांप नहीं है। अंतःकरण में सिर्फ सांप का संस्कार है। ये संस्कार ही आरोपित हो जाता है रस्सी के ऊपर, और जैसे रस्सी में सांप है ऐसे ही आत्मा में रस्सी है नारायण। जैसे रस्सी में सांप है ऐसे ही आत्मा में रस्सी है। ये जो प्रपंच दिख रहा है ना, ये रज्जू वाला सांप की तरह से ही है, रज्जू आप हो और इसमें पुराने पुराने संस्कारों से प्रपंच दिख रहा है। जब आप ये मानते हो, कर्मकांड की दृष्टि से भी मानते हो कि हमने जैसा किया है वैसा ही देख रहे हैं, भोग रहे हैं ना, तो ये प्रपंच जितना भी आपको इस समय अनुभव हो रहा है, अच्छा हर एक की दुनिया प्रपंच की अपनी अलग अलग है या सबको बराबर बराबर प्रपंच दिखता है? सबको अलग अलग दिखता है। क्यों? कि सबके संस्कार अलग हैं। तो जैसे रस्सी वाला सांप सबको अलग अलग दिखता है, मदारी को अलग दिखता है, डरपोक को अलग दिखता है, ऐसे ही ये प्रपंच भी जो है सबको अलग अलग दिखता है। हमारी दुनिया तो बहुत छोटी है, जीव सृष्टि जो है, और ये सब कर्म संस्कारों के ऊपर अवलंबित है। लेकिन ये संस्कार चढ़ते किसके ऊपर हैं? वो अधिष्ठान क्या है जिसपे ये संस्कार चढ़ के प्रपंच को बना रहे हैं? तो बाहर की चीजों की जब आलोचना करते हैं तब उसको ब्रह्म बोलते हैं, और जब सपने आदि की आलोचना करते हैं तब उसी को आत्मा बोलते हैं, दृष्टा बोलते हैं। उस आत्मा पे ये संस्कार चढ़ जाते हैं तो सपना आने लगता है, और उस ब्रह्म में आत्मा में ये संस्कार चढ़ जाते हैं तो सामने ही प्रपंच के रूप में मालूम पड़ने लगता है। पहले आंख मालूम पड़ती है, फिर रूप मालूम पड़ता है। आत्मा के नजदीक आंख है कि रूप है? आत्मा माने भीतर, आपके नजदीक आंख है कि रूप है? आंख है ना। तो पहला जो आरोप होगा वो आंख का आरोप होता है। सबसे पहले आरोप जो है वो अहंकार का होता है, उसके बाद आंख का होता है, उसके बाद फिर रूप का होता है। इतने प्रोसेस से निकल के तब ये प्रपंच आपको दिखता है। तो है तो नारायण कुछ नहीं, लेकिन दुनिया ऐसे ही चल रही है, ऐसे ही चलती रहेगी। जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं वो इस प्रपंच को देख देख करके अपने आत्मस्वरूप को पहचानते हैं, और जो भोगी लोग होते हैं वो इस प्रपंच को देख के आत्मा के तो सोचते ही नहीं, बस भोग को ही देखते हैं। इसको ले लें, इसको छोड़ दें, इसको पकड़ना है, इसको करना है। तो तम अच्छा, ये जो सुख दुख होता है और ये कैसे होता है? ये तो दिखने की बात हुई। अब ये जो सुख दुख होता है, कर्तापन भोक्तापन मालूम पड़ता है, ये कैसे मालूम पड़ता है? तो ये भी रज्जू में सर्प की तरह से ही मालूम पड़ता है, है कुछ नहीं। सुख दुख भी कुछ नहीं है नारायण, वस्तु कुछ नहीं है सुख दुख। बोलो, सुख जो है उसकी कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी उम्र है, कितना वजन है उसमें सुख में, ऐसे ही दुख में भी कुछ नहीं है। तो बोले ये सुख दुख मन में रहते हैं। अरे मन ही कुछ नहीं है तो सुख दुख किस में रहते हैं? तो बोले आत्मा में रहते हैं। आत्मा में तो आत्मा के सिवाय कुछ नहीं रहता है। जब आप आनंद को आनंद के रूप से नहीं जानते हो तब उसी को सुख दुख के रूप से जानते हो। जब रस्सी को रस्सी के रूप से नहीं जानते हो तब उसे माला और सांप इत्यादि जानते हो। तो आनंद का विवर्त है ये सुख दुख, और चैतन्य का विवर्त है ये कर्ता भोक्ता। भोक्ता कहना चाहिए, और सत का विवर्त है ये कर्तापन, सत का विवर्त है कर्तापन और चित्त का विवर्त है भोक्तापन और आनंद का विवर्त है ये सुख और दुख। बस ये सब मालूम पड़ते हैं अध्यास से, आरोप से, वो कौन सा दिन था जब ये अध्यारोप हुआ, तो इसकी अनादि परंपरा है, परंपरा से ऐसा ही चल रहा है और ऐसा ही चलता रहेगा। आप इससे अलग हो सकते हो, बस इतनी बात। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।